1 अगस्त 1971 को 20,000 दर्शकों से खचाखच भरे न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने ये गाना गाया तो पूरी दुनिया का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार और वहां से भारत आ रहे शरणार्थियों की तरफ गया। लेकिन मार्च 1971 से ही अपने ही लोगों पर पाकिस्तानी क्रैकडाउन की खबर बाहरी दुनिया को मिलनी शुरू हो गई थी। उसी समय फ्रांस के नौसैनिक ठिकाने तूलों में अभ्यास कर रही पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस मांगरो के 8 बंगाली नाविकों ने पनडुब्बी छोड़ बांग्लादेश की आजादी के लिए चल रही लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। ऑपरेशन एक्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज कोवर्ट नेवल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान 1971 के लेखक और इंडिया टुडे पत्रिका के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन बताते हैं।
एक बहुत ही अहम किरदार है इसमें, उनका नाम है अब्दुल वाहिद चौधरी। वो बहुत ही एक यंग सेलर थे लेकिन बहुत मोटिवेटेड थे। उन्होंने अपने साथियों को उकसाया और कहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज में हम क्यों हैं, हम चलते हैं फ्रीडम फाइटर बनने के लिए। ये जो 8 लोग हैं वो भाग निकलते हैं वहाँ से। ये जो किस्सा है बिल्कुल एक जेम्स बॉन्ड थ्रिलर की तरह है। ये 8 सेलर जो हैं पहले स्विट्जरलैंड जाते हैं लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं है, इसलिए उनको वापस भेज दिया जाता है और फिर उनको डर लगता है कि अगर वो फ्रांस में ठहरेंगे तो उनको पकड़ा जाएगा और अगर पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कोर्ट मार्शल किया जा सकता है और उनको मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। तो इसी डर से वो फिर स्पेन चले जाते हैं और स्पेन में इंडियन कौंसल जनरल में चले जाते हैं जहाँ उनको मिलते हैं श्री गुरदीप बेदी जो वहाँ के चार्ज द अफेयर्स है, एक यंग डिप्लोमेट है जो उनको एक होटल में पुट अप करते हैं और फिर वो चेक करते हैं दिल्ली से कि इनके साथ क्या किया जाए। तो दिल्ली से उनको मैसेज आता है कि भाई इनको फौरन रवाना किया जाए वापस इंडिया में, उनके जो भी है पासपोर्ट आप नकली पासपोर्ट बना के उनको भेज दें अब हमारे पास। तो गुरदीप बेदी जी जो हैं बैठ के अपने स्टाफ के साथ सारे फेक पेपर्स बनाते हैं और उनको सारे इंडियन नाम दे के उनको एयर इंडिया के जहाज पे बिठा के वापस इंडिया भेजते हैं। और तब तक जो है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को पता लगता है कि ये फरार हो गए हमारे सेलर्स। और एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है इसमें जहाँ पर वो आते हैं एयरपोर्ट में उनको पकड़ने के लिए और चौधरी साहब और सब भिड़ जाते हैं उनके साथ और वो कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम तो इंडिया जाएंगे। इस तरह से वो बैठ के मतलब फरार हो जाते हैं।
इन 8 बंगाली सबमरीनर्स को दिल्ली लाया गया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सेफ हाउस में रखा गया। उस समय भारतीय नौसेना के डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस कैप्टन एमके मिकी रॉय के जहन में ख्याल आया कि फ्रांस से भारत भाग कर आए इन बंगाली नाविकों का इस्तेमाल पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी पोतों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। इस तरह ऑपरेशन जैकपॉट की शुरुआत हुई और कमांडर एमएनआर सावंत को इसकी जिम्मेदारी दी गई। भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट जहां पलासी की लड़ाई हुई थी मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए एक कैंप लगाया गया और इसको कोड नेम दिया गया कैंप टू पलासी यानी C2P। उस कैंप में दिन की शुरुआत होती थी बांग्लादेश के राष्ट्रगान से और फिर सभी लोग बांग्लादेश के हरे और नारंगी झंडे को सैल्यूट करते थे।
अमर सोनार बांग्ला, आमी तुम्हारे भालुबाची, चिरदिन तुम्हारा काश, चिरदिन तुम्हारा काश, तुम्हार बाताश, आमार काने, सुनार बांग्ला।
इस कैंप को चलाने वाले कमांडर विजय कपिल याद करते हैं।
वहां बिजली पानी कुछ नहीं था, लालटेन चलती थी, पानी हैंडपंप से चलता था, खाना लंगर में बनता था, पंखा वंखा कोई नहीं था, मच्छर बहुत थे। वो तो मार्शी एरिया था शुरू से। गवर्नमेंट सप्लाई मच्छर का ऑइंटमेंट मिलता था, वो बोतल में आता था। एक तो उसमें बदबू बहुत आती थी, दूसरा अगर उसको लगा लीजिए तो ये पता नहीं लगता था मच्छर खराब है या वो सोल्यूशन खराब है। मुश्किलें तो थी लेकिन अब ये मुश्किलें तो ओवर कम करनी थी क्योंकि टारगेट सेट था। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, सबको उठा देते हैं जिसको हमको फौज के टर्म में रोल कॉल बोलते हैं। उसके बाद उनको थोड़ा पीटी वगैरह करवाते थे, फिजिकल एक्सरसाइज, फिर उनको सर्किट रन्स के लिए ले जाते थे दौड़ने के लिए। शुरू से किया 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अप टू 10 किलोमीटर तक मॉर्निंग रन होता था। उसके बाद थके थकाए आते थे ये लोग, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया और सीधा स्विमिंग के लिए। उनको ये भी ट्रेनिंग देनी थी कि वो एडिशनल वेट 2-3 kg ले के स्विमिंग कर सके। उसके लिए उनको ईंटें देते थे कि 2-3 ईंटें लेके वो लोग स्विम करते थे, अंगूठे में बांध के, उनके जो वो गमछे होते हैं वैसे बांध के कमर में बांध देते थे और वो लोग स्विमिंग करते थे। फिर उनको खाने के लिए बुलाते थे और फिर वापस ट्रेनिंग, या तो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग देते थे उनको, इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लोसिव या अनआर्म कॉम्बैट या मैप रीडिंग और समथिंग, तो थोड़ी थकान दूर जाती थी, लंच वगैरह, उसके बाद फिर स्विमिंग और फिर नाइट स्विमिंग भी हम लोग करते थे इसमें। तो उनका ट्रेनिंग कम्प्लीट स्विमिंग और पानी में, उनके करीब 6-7 घंटे पानी के अंदर रहते थे।
इन छापामारों को बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत आए लोगों में से चुना गया था। इनको ढंग का खाना खाए हफ्तों बीत गए थे। शुरू में उन्हें चावल खाने की इतनी ललक रहती थी कि वो चावल उबलने से पहले ही उस पर झपट पड़ते थे। भारतीय ट्रेनर्स ने तय किया कि अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाना है तो इनके डाइट प्लान में आमूल परिवर्तन करना होगा।
ये जब सब आए थे, दे वर द डिप्राइव्ड लॉट, इनको एट्रोसिटीज पाकिस्तान आर्मी ने इतनी की थी और ये बेचारे भागे हुए थे, रिफ्यूजी कैंप में रहते थे, इन्होंने देखा है रेप, प्लंडर, एवरीथिंग। तो कई बार तो ये लोग बताते थे स्टोरीज में कि इन्हों 2-3 दिन बिना खाने के ही लोग चल के आए हैं। उससे इनका फिजिकल स्टेमिना या फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल अपेयरेंस भी इतनी ख़राब हो गई थी कि हड्डियाँ निकली हुई थी, और हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, तो इनको लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा राशन दिए, ग्लूकोज, अंडे, मीट वीक में 1-2 बार, और ग्लूकोज, नींबू पानी वगैरह वो 2-3 बार इनको पिलाते थे। तो विद इन अबाउट 15 डेज उनकी अपेयरेंस ही बदल गई।
इन लोगों को 3 हफ्ते तक पोतों को नुकसान पहुंचाने का गहन प्रशिक्षण दिया गया और लिम्पेट माइंस का इस्तेमाल करना सिखाया गया, और ये भी कि किस समय हमला बोलना है।
जो वेपन यूज करते हैं हम, वाटरबोर्न सेबिटियर्स, ये वो होती है लिम्पेट माइन। ये छोटी गोल सेमी हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, इसमें करीब 1-3 kg तक, डिपेंड अपॉन किस साइज का है, हाई एक्सप्लोसिव होता है, और इसको बीच में इंटरमीडिएटली एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर वगैरह लगा के इसको पूरा प्राइम करके एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के साथ तैयार करते हैं। उस टाइम हमारे पास इंडियन नेवी में लिम्पेट माइन नहीं थे, बहुत थोड़े थे, 10 या 20, उससे काम नहीं चलना था। इम्पोर्ट हम कर नहीं सकते थे क्योंकि फॉरन एक्सचेंज क्रंच था, और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे किसी एक्सप्लोसिव कंपनी से अब्रॉड, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ से जाती है, तो वो सीक्रेसी नहीं रह जाती है। तो एडमिरल नंदा ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया नेवल आर्मामेंट ब्रांच को कि हमको लिम्पेट माइन चाहिए, इंडिजेस चाहिए, और इतने टाइम में चाहिए। तो ये लिम्पेट माइन हम लोगों ने प्रोड्यूस करनी शुरू की, तो इवेंचुअली जब तक उनको अटैक था, जब अटैक करना है ये सब नेवल हेडक्वार्टर से डिसाइड किया था, क्योंकि इसमें डिसाइड करना है टैक्टिकल सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से अटैक प्लान होता है।
दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए हजारों कॉन्डोम्स की व्यवस्था की गई। मैंने संदीप उन्नीथन से पूछा कि इसकी वजह क्या थी।
ये जो लिम्पेट माइन है उस पे एक तरह का एक फ्यूज सा लगा रहता है जो एक सॉल्युबल प्लग है। प्लग जो है ये नमक का बना हुआ है, और जैसे ही वो पानी में आ जाता है वो प्लग पूरा घुल जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है, और इसकी जो फायरिंग सर्किट है कंप्लीट हो जाती है और उससे बम फटता है। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर स्विमर ये लिम्पेट माइन लेके पानी में उतरता है तो उसे बहुत कम समय मिलेगा पानी में। जैसे वो पानी में उतरेगा वो प्लग घुलने लगेगा और हो सकता है कि वो फट जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी का आइडिया आया कि क्यों ना एक कॉन्डम लगा देते हैं उसको, मतलब उसको वाटरप्रूफ कर देते हैं इस प्लग को। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया आइडिया सोच लिया था कि सारे प्लग्स पे है जो है डाइवर जाएगा, ये कमांडोज जाएंगे, पहले कॉन्डम लगाएंगे अपने प्लग पे और फिर उतरेंगे पानी में, और उनकी जो आखिरी वो चीज़ करेंगे वो लिम्पेट माइन चिपकाने के बाद वो कॉन्डम निकाल देते हैं, और फिर आधे घंटे के अंदर जो है जब बम फट जाता है।
150 से अधिक कमांडोज को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंचाया गया, और नेवल इंटेलिजेंस के चीफ और कमांडर सावंत ने तय किया कि पाकिस्तान के 4 बंदरगाहों पर खड़े पोतों पर एक साथ हमला किया जाए। सारे कमांडोज को एक एक लिम्पेट माइन, एक रेडियो ट्रांजिस्टर और 50 पाकिस्तानी रुपए दिए गए।
जो सारे कमांडर्स थे उनके हाथ में एक एक रेडियो सेट दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते रहेंगे। तो इस तरह से वो चले जाते हैं, 4 पोर्ट्स हैं, चित्तगोंग, नारायणगंज, छालना मोंगला और चांदपुर। इन 4 जगहों में वो सेफ हाउसेज में जाके छुप जाते हैं और सिग्नल का वेट करते हैं। और 14 अगस्त के करीब वो सिग्नल आ जाती है रेडियो पे, 2 गाने बजते हैं एक के बाद एक। तभी उनको ऑर्डर मिल जाए कि भाई ये हमारे सिग्नल आ गए। पहले आरती मुखर्जी का गाना आता है,
हमारे पुतुल आज के प्रथम जबे शुशुर बाड़ी पालकी चेपे बड़ेर साथे आनंद दे।
14 अगस्त 1971 की सुबह 6 बजे आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र से एक गाना और सुनवाया गया।
आमी तुम्हें जत सुनिए छेम गी तुम्हें जत सुनिए छेम
गे भी एक तरह का कोड था। इसका मतलब ये था कि इन छापामारों को उसी रात चटगांव सहित 4 बंदरगाहों पर हमला करना था।
सबसे बड़ा अटैक जो हुआ था चित्तगोंग में था, और उस चित्तगोंग जैसा आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है ईस्ट पाकिस्तान में, जहां से सारे जो हथियार और सप्लाईज आते हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो चित्तगोंग में सारे कमांडोज आके बस जाते हैं शहर के अंदर, और अटैक कैरी आउट करने के लिए उनको शहर से बाहर जाना पड़ता है। पोर्ट जो है एक नदी के अंदर है, तो उनको अपस्ट्रीम जाना पड़ रहा है, और अपस्ट्रीम से वो तैर के नीचे आएंगे पोर्ट में, अपने एक्सप्लोजिव फिट करके फिर बाहर निकल जाएंगे। तो उनको ये प्रॉब्लम था कि ये सारे जो बॉम्ब है, ये जो लिम्पेट माइन है, वो कैसे स्मगल किया जाए। तभी उनको आइडिया आता है कि उनके जो वहाँ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड मूवमेंट को हेल्प कर रहा है, वो वापड़ा के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो ट्रक्स हैं वो ले आते हैं, और उसमें वो सारा सामान रखते हैं, और वो बाजार से बहुत सारे फल और वेजिटेबल्स खरीद के उसमें छिपा देते हैं, इन बास्केट्स में उस माइंस को छुपा के वो शहर के बाहर ले जाते हैं, और वहां से कमांडोस फिर लॉन्च होते हैं पानी में।
उधर नौसेना के दिल्ली मुख्यालय में कैप्टन मिकी रॉय अपने सामने रखे कई फोन्स में से एक खास फोन बजने का इंतजार कर रहे थे। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे कैप्टन सावंत अपनी रिपोर्ट लिखते समय वही कोडेड गाना गुनगुना रहे थे जिसे उस दिन सुबह AIR पर बजवाया गया था। इस पूरे मिशन में कैप्टन सावंत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इस समय फ्रांस में रह रही उनकी बेटी उज्ज्वला सावंत याद करती हैं।
वो जो 22 महीनों के लिए गए थे, पहले तो हमें पता भी नहीं था वो कहाँ थे। जब वो घर एक दिन आए तो उन्होंने बताया भी नहीं कि उनको एक दिन की फर्लो मिली थी। मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला क्योंकि उनको पहचाना भी नहीं, उनकी दाढ़ी वाड़ी थी और मेरे पिताजी की तरह मैंने मेरे पिताजी को दाढ़ी तक देखी नहीं थी। तो मैं बस देख रही थी कि ये है कौन शख्स जो घंटी बजा रहा, कह रहा है जो दरवाजा खोल दे मैं घर आया हूँ। ही इज वेरी सीक्रेटिव, ही वाज वेरी बाय द बुक रूल्स उसके बारे में। तो उन्होंने हमें कभी असलियत बताई नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया था। या जब मम्मी गई थी ढाका, तब उसने कहा कि आई थिंक तुम्हारे पिताजी ने बहुत कुछ किया बांग्लादेश में, मगर वो अभी कुछ बता नहीं रहे हमें।
14 अगस्त की आधी रात को चटगांव में मुक्ति वाहिनी के सैनिक शाह आलम ने सबसे पहले पानी में छलांग लगाई। इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे फ्रांस में PNS मैंग्रो छोड़कर भाग कर आए अब्दुल वाहिद चौधरी।
इनको ट्रेनिंग जैसे दिया गया है कि वो उनको रिवर के अपस्ट्रीम जाके वहां से उनको लॉन्च करना है करंट के साथ। तो ये सारी जो ऑपरेशन है पहले वो प्लान करके देखते हैं कि किस रात को चांद नहीं होना चाहिए, टाइड्स बिल्कुल हमारे फेवर में होने चाहिए, ये सब देख के वो लॉन्च करते हैं रात के 1 बजे के बाद। और सारे कमांडो एक के बाद एक पानी में घुसते हैं, अपने लुंगी डिस्कार्ड करते हैं, स्विमिंग ट्रंक्स पहनते हैं और फिर फिन्स पहनते हैं, वो नाइव्स हैं उनके साथ ये शिप के साइड क्लीन करने के लिए, और हर किसी के पेट पे जो है लिम्पेट माइन बांधते गमछा लेके। तो ये स्विम करके शिप्स के पास चले जाते हैं। शाह आलम जो है एक बहुत ही ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट थे, वो लीड करते हैं इस ऑपरेशन को, और चौधरी साहब जो है ये सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज है चित्तगोंग में, और वो चित्तगोंग के नेटिव भी थे तो काफ़ी सारा वो जानते थे एरिया को। और रात को साहब कमांडोज चले जाते हैं, और ये आप सोच लीजिए कि किस तरह से उन्होंने चार पोर्ट्स पे एक ही तरह एक ही रात को कोऑर्डिनेट करके सारे कमांडोज पहुंच जाते हैं शिप्स पे अपना ये लिम्पेट माइन जो टाइम बॉम्ब है फिट करके वहां से तैर के बाहर निकलते हैं भाग जाते हैं और रातों रात एक साथ 20 30 40 एक्सप्लोजन्स मतलब एक कहर जैसा माहौल हो जाता है रात को और पाकिस्तान आर्मी जो है उनको पता नहीं लगता है कि किस पैमाने पे ये क्या हो रहा है।
इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी नौसेना के 44,500 टन वजन के पोत डुबोए गए और 14,000 टन वजन के पोतों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सेना ने इसका बौखला कर जवाब दिया। इन इलाकों से सटे पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए गए और वहां पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हिस्सा नौसैनिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए डाइवर्ट कर दिया गया।
एंड जुलाई में इनके करीब तीन साढ़े तीन डिवीजन पाकिस्तानी आर्मी के पंपिंग कर दिए गए थे ईस्ट पाकिस्तान में और आर्मी आर्मी दिखाई देती थी। मुक्ति वाहिनी को इन्होंने एकदम ढकेल दिया था इंडियन बॉर्डर पर। मुक्ति वाहिनी का लैंड फोर्सेस का मोरल बड़ा लो था उस टाइम। जब 15 अगस्त का अटैक हुआ तो सडनली पाकिस्तान रियलाइज दे हैव बीन कॉट विद द पैंट्स डाउन। तो इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी ने अपने करीब 1.5 डिवीजन 2 डिवीजन वापस बुला लिए क्योंकि उनकी पूरी लाइफलाइन रिवरेंट ट्रैफिक पर थी। हर चीज उनकी आर्म्स एमिनेशन मेन मटेरियल एवरीथिंग मूव्ड बाय द स्मॉलर शिप्स थ्रू द रिवर्स। चिटगांव पोर्ट में एकदम पैरालिसिस जैसा हो गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता लगा कि मुक्ति वाहिनी बहुत स्ट्रांग हो गई है। इंश्योरेंस ऑफ द मर्केंटाइल मरीन मर्चेंट शिप का इंश्योरेंस दुगना हो गया। कोई आना नहीं चाहता था। तो अनदर फाइनेंशियल लोड ऑन पाकिस्तान। दूसरा पोर्ट पार्शली क्लोज हो गया और तीसरा इनके फोर्सेज विड्रॉ हो गए। मुक्ति वाहिनी अगेन केम इनटू फ्रेश ब्लड।
3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 22 महीनों तक अपने घर से दूर रहने वाले कैप्टन सावंत अपने घर विशाखापट्टनम लौटे लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही। उनकी बेटी उज्ज्वला को वो दिन अभी तक याद है।
पहले तो वो सिविलियन कपड़े में नहीं थे और फिर हमको लगा हाँ ये तो हमारी डैडी है और घर आए मगर बहुत दुबले हो गए थे और ही वाज वेरी साइलेंट। मेरे ख्याल में जो उन्होंने वहाँ देखा था वो उनके दिल को भी छू कर लेफ्ट मार्क ऑन हिम। और वो जब मुक्ति वाहिनी के बारे में बात करने लगे तो उन्होंने कहा वो तो बच्चे थे तुमसे कई 4-5 साल तुमसे बड़े थे और वो बहुत थके हुए थे ना। डॉक्टर ने उस वक्त कहा था कि उनको जितनी नींद की जरूरत पड़े सोने दो क्योंकि ये कितने महीनों से वो ठीक से सोए नहीं थे मगर वो वापस चले गए ना। उसके बाद काम पड़ा था ढाका में मगर जब वो पहली बार घर आए तो दिवाली दशहरा क्रिसमस एक साथ हो गए थे। ऐसी हमारी माँ के चेहरे में बड़ी खुशी फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड हैप्पीनेस की बापरी वो घर आए।
और कोई किसी खास खाने की फरमाइश की उन्होंने क्योंकि
जब वो पहली बार आए थे ना तब भी उन्होंने चपाती की रोटी खाई और उन्होंने फिश करी और वो चावल विद सोल कड़ी और हमारे बागीचे के का पपाया। वो कह रहे थे कि वहाँ तो वो कह रहे थे कि ज्यादातर वो बच्चों को मुक्ति वाहिनी के ज्यादातर छोटे यंग थे ना सब स्टूडेंट्स थे तो वो कह रहे थे कि उनको खिलाने की मेरी पहली ये थी कि उनको पहले खिलाना है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।